أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمبر رضوی حاضر ہے. ناظرین کرام, ہم پچھلے چار پروگرامز میں تاریخ عراق کے حوالے سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا نقی ہاشمی صاحب کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ آغا صاحب کے ساتھ جاری ہے. آغا صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آغا صاحب, ہم پچھلے چار پروگرامز کر چکے ہیں, آج جو ہے نا وہ دوبارہ ہم تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے, جو خاص طور سے دو الیکشنز ہوئے. آپ نے کچھ مقتدہ صدر کے بارے میں بتایا, ان کی جو ہے نا تاریخ اور ان کا بیک گراؤنڈ بتایا. پچھلے دو الیکشنز میں ان کی پارٹی جو ہے نا وہ اکثریت کے ساتھ آئی ہے, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, ان کی اکثریت کیوں آئی اور پھر جو ہے نا وہ کیا ہوتا رہا عراق میں دو الیکشنز میں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. دو تین پروگرامز یا چار پروگرامز ہمارے رہے, اچھی کاوش ہے آپ دوستوں کی, اور بہرحال شکریہ بھی آپ سب کا کہ اہم موضوعات کو آپ عوام, ہماری وہ مستضعف عوام کی, اگر آپ اس کو اچھی خبریں اور صحیح خبریں نہ دیں تو اس وقت ذرائع نہیں ہیں لوگوں کے پاس. اور آج کی ترقی یافتہ خصوصاً سوشل میڈیا اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ صحیح خبر کا پہنچنا ان تک بہت مشکل کام ہے. بہرحال اس طرح کے سارے پلیٹ فارمز انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے صحیح خبریں ان تک, عوام تک پہنچائی جائیں. آپ کا جو سوال ہے, اس سے پہلے تو ایک دو باتیں امپورٹنٹ میں چاہ رہا تھا کہ ہو جائیں, جیسے کہ ایک دو تاریخیں اشتباہاً میں نے, جیسے شہید باقر صدر اور ان کی بہن آمنہ بنت الہدا کی جو شہادت کا سن میں نے 78 کہا, جبکہ وہ 1980 ہے, 1980 ہے.
جی جی.
تو ایک یہ وہ تھی ذہن سے نکل گئی بات, اور کچھ اور تاریخ بیان ہو گئی تھی. اور اسی طرح سے یہ بات ٹھیک ہے کہ سارے الائنس جتنی بھی لیڈرشپس رہی ہیں, بہرحال میں اسی بات سے زیادہ داخل ہوتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں, کہ بہت ہی مظلومیت والی زندگی عراقی عوام نے گزاری. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عملی طور پہ سبھی کو خاموش کر دیا تھا صدام نے. حوضہ بتایا آپ کو کہ ناطق حوضہ صامت حوضے میں تبدیل ہو گیا تھا. انہوں نے بولنے والی تمام شخصیات کو یا ملک بدر کرنے ہونے پر مجبور کیا یا سب کو شہید کر دیا, اور اسی طرح سے
یا بزلو ستم کر کے ان کو اسارت کے ساتھ
خاموش کر دیا, شہید
گیا.
ہوئے بہت بڑے پیمانے پر لوگ. تو عراقی عوام کی بھی حالت یہ ہو گئی کہ اس تسلط نے, اور یہ تصورات پیدا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم لوگ بہت ہی اقلیت میں ہیں اس لیے ہم پر, اور پھر ایک اہل سنت کے نام پہ صدام جیسے پہلے والوں نے, شاید ان کی بھی عمر جو ہے وہ 200 سال 300 سال ہے کہ جنہوں نے عراق پر حکومت بنا کے رکھی, تو ایک یہ تاثر اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اہل سنت ہم پر حاکم رہے ہیں, اس کا مطلب ہے تعداد ان کی زیادہ ہوگی. اہل سنت میں تصور پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت بھی تشیع کی طرح مظلوم تھے. یہ تو صدام یا ان سے پہلے کے لوگ انہی کو نوازتے رہے, نوازنے کا سلسلہ جاری رہا, لیکن وہ تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی, یا جنہوں نے انگریزوں کی خدمت کی, جنہوں نے اپنے ملک کے وسائل, اپنے ملک میں لوگوں کو مظلوم مستضعف رکھنے کے لیے ہمیشہ امریکہ یا اس سے پہلے کے استعمار برطانیہ, فرانس, جرمنی, ان کی بات مانتے رہے, وہ لوگ ہمیشہ اس ملک میں استفادہ کرتے رہے. مظلوم شیعہ بھی رہا, مظلوم سنی بھی رہا, مظلوم کردی بھی رہا.
صحیح.
میں یہ تقسیم اس لیے کہتا ہوں کہ تقسیم انہوں نے خود کی بھی ہے, میں نے نہیں کی. اب آئیے آپ تھوڑا اور داخل ہوں. انتخابات, یہ 2016-17 میں پہلی مرتبہ انتخابات ہو رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے پہلی مرتبہ سے میری مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تو صدام نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر رکھی تھی, تصورات میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پر انتخابات ہوں گے. تو وہ ڈکٹیٹرشپ رہی, اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا 2003, اور اس کے بعد انہوں نے ملک کا جو ہے وہ اپنے طور پہ آئین میں, وہی صدام کے آئین میں کچھ تبدیلی کی, اور اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی گھناؤنا, بہت ہی برا نظام متعارف کروایا الیکشن کا, کہ جو بظاہر دنیا سمجھتی ہے کہ عوامی الیکشن ہو رہا ہے, یہ جمہوری الیکشن ہو رہا ہے, لیکن وہ جمہوریت کی جس کی تعریف خود انہوں نے کی ہے. اور میں شاید پہلے بھی اشارہ دے چکا ہوں آپ کو کہ لبنان میں تو قانون ہے کہ وہاں پر सुन्नी को कौन सी पोस्ट मिलनी है और ईसाई को कौन सा ओहदा मिलेगा और शिया को कौन सा ओहदा मिलेगा, वहाँ तो शायद कानून में है, लेकिन इराक में ना लिखा हुआ कानून है ये, वहाँ कानून लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि वज़ीर आज़म हमेशा शिया होगा, वज़ीर जो हमारे मुल्क के सदर हैं वो कुर्दी होंगे, और जो अहले सुन्नत हैं उनको ओहदा मिलेगा पार्लियामेंट के स्पीकर का, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तकरीबन इसी पर अमल हो रहा है इराक में। जब से आज़ाद, उनके बकौल आज़ाद इलेक्शन शुरू हुए, भाई कि हम उनको आज़ाद इलेक्शन नहीं मानते क्योंकि उनका निज़ाम बहुत बुरा हो गया। इससे पहले कि मैं असल इसी में दाखिल हो जाऊँ कि ये पार्लियामेंट में पहुँचने के लिए या मुल्क के अंदर इंतखाबात की जो उन्होंने बिसात बिछाई है उसके खदोखाल क्या हैं, मैं उस खदोखाल बयान करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सी बात अंदाज़ा हो आपको कि मुल्क के हालात और गुरबत के हालात खुसूसन इतने शदीद हैं कि वहाँ पर कोई भी मुल्क किसी भी एक शख्सियत से राबता कर लेता है और फिर बहुत नवाजता है उसको, बहुत पैसा देता है उसको ताकि वो अपने वोट बैंक को मजबूत करे, क्योंकि जो जहाँ इलाके में काम करना शुरू करता है उसका वोट बैंक वहाँ मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक तसलसल है 2003 के बाद से कि इसमें हम देख रहे हैं तुर्की की मुदाखलत है, हम इसमें देख रहे हैं मिस्र की मुदाखलत है, और बहुत खुल के जो मुदाखलत है वो सऊदी अरबिया की मुदाखलत है, अरब इमारात की मुदाखलत है, और यकीनी तौर पर इसमें जो है वो ईरान भी अपना हिस्सा डालता है। अब क्या इनके सबके नज़रियात हैं, मैं अभी उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन ये सब कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई रोल हमारा रहे, और उसके लिए वो ये करते हैं ये ममालिक, और उसके लिए करते हैं कि वो अफराद शख्सियात या तंजीमों पर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम, मजबूत निज़ाम, मरकजियत ना होने की बुनियाद पर ये और ज़्यादा यानी इसमें। अच्छा, अब एक बात ये थी मुकदमाती, दूसरी मुकदमाती बात इससे भी इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एक बास पार्टी का निज़ाम हुआ करता था, हमने बताया कि यहाँ पर बास पार्टी ही हुकूमत बनाया करती थी,
सद्दाम वाली पार्टी,
सद्दाम के ज़माने में बहुत ताकतवर हो गई, बल्कि समझें सारा ही जितना भी इख्तियार है वो इन्हीं के पास था, वज़ारत खारजा से वज़ारत दाखला तक सारे उमूर, वज़ारत ख़जाना, यानी हर चीज़ इनके पास थी। ये जो बास पार्टी है, होता यूँ था कि किसी को भी अगर किसी मनसब पर पहुँचना है, चाहे वो फ़ौज में हो, एजेंसीज में हो, हुकूमत में हो, या तिजारत बिजनेस और फलों, उसने जिस मनसब पे पहुंचना है उसको बास पार्टी का हिस्सा बनना पड़ता था, और उस मुल्क में 2 मिलियन लोग बास पार्टी के रुकन थे। यानी बास पार्टी क्या मतलब एक छोटे से किसी इदारे में हुकूमती जॉब हासिल करनी है आपको, पोस्टमैन के फसला पर पता चला कि आपको बास पार्टी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ना कि सलाहियत, ना कि अहलियत, ना कि काबिलियत, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब हुआ यह कि सद्दाम के बाद जब वो 2003 में गायब हो गया तो अमरीका ने बास पार्टी को ये कह के कि सद्दाम की पार्टी है उसको मुनहल कर दिया, ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद हम नहीं कह रहे कि सारे ही चिटरन थे बास पार्टी में, गलत है ये कहना भी, मैंने वो बताया कि मजलूमियत की हालत है लोगों की कि वो छोटे छोटे मुकाम और पोस्ट लेने के लिए बास पार्टी का हिस्सा बन रहे थे। अब मसला ये हुआ कि गंदम तो पिसा ही पिसा, गेहूँ भी पिस गया, यानी बेचारा मजलूम भी पिस गया। अब वो जो मजलूम पिसना शुरू हुआ ना, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब बास पार्टी ख़त्म होती है और उन पर इल्ज़ाम लग जाए तो बासी है, उसमें अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, वो सब बास पार्टी का हिस्सा बने, और उसके बाद अक्सरियत जो है उन्होंने अपने आप को जो है ना वो कहा कि हम तो बास पार्टी से नहीं हैं, फ़र्ज़ करें उन्होंने इस तरह का एक रवैया अख्तियार किया और फिर कोशिश की इलेक्शंस में हिस्सा लें फलाने। अब जब ये वाला सिलसिला शुरू हुआ तो इसके अंदर इनके ही लिबादे में छुप के गलत लोग भी शामिल होना शुरू हो गए कि अभी हम भी सियासत में हिस्सा लें, हम भी हुकूमत में आएंगे, हमने तौबा कर ली, हमने जब सद्दाम ने हम पे ज़बरदस्ती की थी। अब आप किसी के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ कि ये नज़रियाती सद्दाम का हामी था या ये सिर्फ मजबूर और इजबार की बुनियाद पर ज़बरदस्ती इसने कबूल किया हुआ था ओहदा, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ। अब आपने जो है ना वो मजबूरन, यानी एक खेल हो गया ये भी, बहरहाल मैं भी इसकी तशबीह देना नहीं चाह रहा, आपके मुल्क में भी एक बार इस तरह खेल हो चुका है, देना जो है थोड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। अब होता ही है कि ये लोग जो है ना वही हुकूमती ओहदे लेना शुरू कर देते हैं, हर जगह हर सीट के ऊपर ये भी आना शुरू कर देते हैं। अब आपको ताज्जुब हो रहा है कि इनकलाब आ चुका है, 2003 में सद्दाम जा चुका है, बास पार्टी मुनहल है, और उसके बावजूद बगदाद में हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो सामर्रा में जो है यूँ हो रहा है, उसके बावजूद जो है वो दाइश पहुँच जाती है और उसने वो इलाका सारा अलम्बार का और जो इम्पोर्टेंट इलाके थे वो सारे के सारे अपने कब्ज़े में ले लिए, तो लोग हैरान हो रहे होते हैं। और फिर धमाके इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद भी वो हरम में भी धमाके में कामयाब हो जाते हैं और वो हत्ता के करबला भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो लोगों के लिए सवाल उठता था कि यार सद्दाम जा चुका है, अब कौन है कि जो बगदाद में, काजमैन में, सामर्रा में, करबला में, नजफ में हमले होते हैं, धमाके होते हैं, क्या हो रहा है,
कौन कर रहा है?
तो पता चलता है कि धमाके करने वाला तो है ही नज़रियाती बास पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मसला यह है कि इस सिक्योरिटी पर जो खड़े हुए हैं वो भी,
सुभानअल्लाह,
जो फौज में खड़े हैं वो भी, जो पुलिस में मौजूद हैं वो भी, हत्ता के इनको छोड़ दीजिए आप, मुझे खौफ और ख़दशा यह है कि सिक्योरिटी जो हरम की है उसमें भी लोग शामिल हो सकते हैं बास पार्टी के, जब भी तो सारी सिक्योरिटीज़ को फिल्टर होते होते आदमी यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है, इतना ख़तरनाक फिल्टर लगे हुए हों फिर भी वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि, यानी मैं समझाने की कोशिश आपको क्या कर रहा हूँ कि हम देखते तो हैं बज़ाहिर एक आज़ादी मिली है, बज़ाहिर जो है वो अमरीका और सद्दाम का रोल ख़त्म हुआ है, एक जमहूरियत आई है, एक हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन जब आप पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि हर एक के अंदर किरदार है, हर एक में रोल है, हर जगह घुसे हुए हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
मतलब और ऐसे तक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं तो
सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं आपको पिछली काबीनाएँ बताऊँ तो आप ताज्जुब करेंगे, सारी बड़ी पोस्टों पर बास पार्टी के लोग थे, काबीना वजारती काबीना
जो मतलब
वजीर आजम की काबीना,
जो सद्दाम के साथ रह चुके थे,
जी जो सद्दाम के साथ रह चुके थे और नामवर लोग थे, उन्होंने अपनी जगहें बना ली हैं वजारत के अंदर आ गए, तो फिर गवर्नरशिप पे क्या नहीं है, मौजूद हैं गवर्नर्स मौजूद हैं जो कि सारे बास पार्टी के थे। हत्ता कि ये जो आपने सुना कि जब दाइश दाखिल होती है तो दाइश कहीं किसी जगह दाइश का मुकाबला नहीं हुआ है, ये दाखिल होने के बाद पहुंच गए हैं 20 किलोमीटर बगदाद से, करीब बगदाद से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर रह गए थे। तो ये कैसे हुआ था, ये वो नफूस था कि जो बास पार्टी ने गायब होने के बाद पूरे मुल्क में किया और ये क्या कह के किया कि हम तो मजबूर थे, और आपने जो है ना वो कहा कि हाँ ये तो वाकई, मैंने आपसे कहा कि किसी के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ, आपके पास कोई सिस्टम तो नहीं था कि आप पहले से इन तमाम चीज़ों के बारे में अंदाजे लगा लेते कि क्या होने जा रहा है, कोई आपके पास कोई भी फिल्टर नहीं था क्या, आप कहते हैं कि यार ये कैसे पता चलेगा कि ये बासी वाकई तौबा कर रहा है या अभी तक बासी है नज़रियाती एतबार, ये सब अगर समझ में आ गया उसमें
थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए था, टाइम पीरियड ही होना चाहिए था कि मतलब कोई आया, आपने कहा कि ये जो ना वो हमें एक वो बंदा के जो बास पार्टी में था, आप एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए था कि कुछ अर्सा उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि वाकई नज़रियात की।
2017 में इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि उन्होंने 2003 के बाद अपने तौर पे बहुत कुछ इस तरह का सोचा हुआ था, वो तो अपने तौर पे कर ही रहे थे, लेकिन देखें जहाँ पर जासूस ये प्लान कर ले कि मैंने जो है वो मुस्तकबिल में बहुत बड़ा किरदार अमरीका और सऊदी अरब के लिए फ़र्ज़ करें रोल प्ले करना है, तो वो फिर खामोश रहेगा ना, वो तो अपने आप को नमाजी बना देगा, वो तो आपके साथ शामिल हो जाएगा, मातम करेगा, अज़ादारी करेगा, वो तो आपके साथ, भाई तरीक़ेकार तो यही है ना, इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है कि हम इसको अगर अब ये बात यहाँ क्लियर हो गई ना, अब आप आ जाइए अलायंस बनने पर, यानी मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शंस के लिए जो है ना वो धड़ाधड़ पार्टीज़ बन रही हैं, और जो ये दो इलेक्शंस तो यानी इसलिए कि बहुत दुनिया में शोहरत पाई है, इससे पहले भी इलेक्शंस हुए लेकिन उस वक्त ना इतना शऊर था ना इतना अच्छा निज़ाम, निज़ाम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने निज़ाम क्या बनाया हुआ है। आप ताज्जुब करेंगे कि पार्लियामेंट जो बन जाती है उनका कोई किरदार और रोल नहीं होता, हत्ता कि वज़ीर आज़म साहब का किरदार भी नहीं होता कि मुल्क इलाकों के जो इनके सूबे बनते हैं उन सूबों का गवर्नर कौन होगा, कोई को रोल नहीं होता, अमेरिका ने इस सिस्टम को अलग रखा है और इस सिस्टम को अलग रखा है। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शंस जो उसके नीचे के हैं जिसमें एक ऐसी लोकल बॉडी बनती है कि जो बहरहाल फराहम करती है ऊपर खिदमात, उस बॉडी का इस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी उसने अलग अलग सिस्टम्स बना दिए। और ये क्या कहेंगे, कहेंगे कि देखो जिन इलाकों में कोई बहुत मारूफ मशहूर कबीला है उस कबीले को आप ये मैंडेट दे दीजिए, ये मेरिट दे दीजिए कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो किसी गवर्नर का इंतखाब कर ले। यानी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मजाहिब का रोल कम हुआ, फ़िरकों का रोल कम हुआ, दीन का रोल कम हुआ और कौमियत ऊपर लाई गई। अब आपको बता रहा हूँ कौमियत को आहिस्ता आहिस्ता तकवीत दी जा रही है कबाइली निज़ाम के ज़रिए से। अब ये कबाइल के इख्तियारात ज़्यादा, पार्लियामेंट के इख्तियारात कम, मुसलसल ये पूरे इराक़ के अंदर है। यानी अदालत का किरदार कम, जो कबीले का सरदार है उसका रोल ज़्यादा, यहाँ पर काजी कोजात बैठा हो फिर्स करें चीफ जस्टिस, वो एक फैसला करे नहीं मान रही पब्लिक, और फिर एक आ जाए कबीले का सरदार वो आके फैसला करवाए, दोनों तरफ कबाइल बन जाते हैं। इसको तकवीत दी गई और इनको इख्तियारात भी दिए गए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनको कहा कि लोकल गवर्नमेंट में आपका किरदार है और इसी तरह से। अच्छा अब आइए इलेक्शन, यानी एक आदमी जो है वो आप ताज्जुब करेंगे बगदाद से जीता है 8,000 वोटों से, यानी कुल वोट 8,000 पड़े हैं उसको। नहीं कि मैं कह रहा हूँ बगदाद के जहाँ पर कम से कम 80 से 85 लाख लोग होने चाहिए और एक खबर के मुताबिक शायद करोड़ से थोड़े से कम कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर इलेक्शन जीतने वाले के टोटल वोट ही 8,000 हैं।
यानी मतलब शिरकत ही नहीं है, अवामी शिरकत।
आप क्या समझेंगे कि अवामी शिरकत नहीं है? पता चला नहीं, यहाँ पर वोट कबीले को देना होता है, कबीले के कुछ खास लोग हैं वो वोट हासिल करते हैं और वो जिसके हक में वोट डाल देते हैं वो सब बन जाते हैं, चाहे वोट जिस, यानी अब ये वोट। अच्छा इसके बाद एक और
सिस्टम,
ये सिस्टम है, उसके बाद एक और बुरा सिस्टम है। अब ये तो जो मैं बताया, अब इससे भी बुरा और भी बुरा है, वो आइए उस तरफ आइए। वो ये है कि मुख्तदा को टोटल वोट की जिसकी बुनियाद पर 73 सीटें उसने ली हैं 329 में से, टोटल वोट उसका 6 लाख है, पूरे इराक का 6 लाख वोट लिया है सर उसने। और नूरी मालिकी के जो मजबूत कैंडिडेट्स के बाद बनते हैं अभी, वो अगर उनकी सीटें 35 सीटें और उनका टोटल वोट 9 लाख है,
यानी 3 लाख ज्यादा वोट,
3 लाख ज्यादा होने के बावजूद भी आधी सीटें उनके पास हैं। आइए और बुरा है, इससे भी बुरा आइए, नीचे आइए। जो दौलत यानी जो अलहिकमा जो बनाई हुई अम्मार हकीम ने, इनके वोट तकरीबन कोई 4 लाख के करीब हैं और इनके पास सिर्फ 2 सीटें हैं।
4 लाख में 2 सीटें,
यानी अब आप समझ रहे हैं क्या निज़ाम बनाया हुआ यहाँ पर। ये अमेरिका बहादुर निज़ाम बना के गए हैं कि जिसकी बुनियाद पर आवाम किसी को भी पसंद करके वोट डाले, लेकिन ये सारे के सारे वोट काउंट नहीं होते। कोई अशीरती वही जो मैंने कहा शायरी या कबाइली निज़ाम है, जिस बुनियाद पर वो फैसला करके वो जिसको वोट कहते हैं वो वोट कहलाता है, ना ये कि हर आवाम बेचारी जो वोट डाल रही है उसके वोट को वोट कहते हैं। यानी उन्होंने जिसको आप कहते हैं ना, हमारे क्या कहते हैं, हलकों की तकसीम, हलकों की तकसीम इतनी ज़बरदस्त कर दी है पूरे पूरे इराक में कि वहाँ पर उन्हीं की मर्ज़ी का आदमी जो है ना वो इलेक्शन जीतेगा। अब ये आपको आपके लिए अजीब होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इराक का जैसा इंतखाबाती निज़ाम है दुनिया में कहीं नहीं है जैसा इन्होंने किया। अब ये ले जाना चाह रहे हैं इराक को इसी तरह, शाम को नहीं सॉरी लबनान को, लबनान को ले जा रहे हैं
फेडरलिज्म,
उससे भी खतरनाक है यार ये, क्या क्या सूरत हाल है। अब ये ले जाना चाह रहे हैं लबनान को इसी तरफ, आहिस्ते से लेके जाएंगे मिस्र को इस तरफ, फिर जो आहिस्ते से आप देख रहे हैं ना कि सऊदी अरबिया, अरब इमारात, ओमान, इनमें भी, या कुवैत या कतर, इनमें भी अब जमहूरियत की बातें चल रही हैं। ये पहले इस निज़ाम को इराक पर आजमा रहे हैं और फिर इसी तरह का निज़ाम हर जगह पर हो जाएगा। दुनिया अपने कानों से सुन रही होगी कि इलेक्शन हो रहा है, जमहूरी इलेक्शन हो रहा है लोग, लेकिन ना आपको लोगों की लाइनें नजर आएंगी ना इंतखाबात में, इस तरह से होगा आपको पता चला करेगा इलेक्शन हो गया, ये पता चला करेगा आपको इलेक्शन हो गया, आप समझेंगे मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया आपको यूँ शो करेगा कि जैसे जमहूरी इलेक्शन हुआ है, पता चला इतना ज़्यादा जैसे आप क्या कहते हैं प्लांटेड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ कुछ और होता है ना, हमारे क्या कहलाता है, कंट्रोल्ड इलेक्शन जमहूरियत तो नहीं, एक और इस्तेमाल होता है, बहरहाल तो ये यानी इस तरह का एक निज़ाम राइज है। अब आप उसमें देख रहे हैं मुख्तदा सदर साहब जना, पिछली दफ़ा ऐसे एक अजीब सी बात थी, पिछली दफ़ा मुख्तदा के पास तकरीबन कोई 40 कुछ सीटें थी, यानी अलायंस के पास, इसके अलायंस के पास, इसमें कुछ कुछ कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे, कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, कुछ अहले सुन्नत का शामिल थे, सऊदी अरबिया ने कहा था कि बसरा के लोग जिन्होंने कहा था कि तुम इसका मुख्तदा के साथ दो, फिर उसके पास 43 सीट्स थी पिछले इलेक्शंस में। और उसके बाद ताज्जुब करेंगे आप, 300 से ज़्यादा पोस्टें इसके पास मौजूद थी, 300 से ज़्यादा पोस्टें गवर्नमेंट की मौजूद थी इसके पास, ऊपर वजारत से लेकर, वजारत से लेकर और नीचे पता नहीं कितने इदारे। और सबसे ज़्यादा मुजाहरे में आगे आगे इराक का निज़ाम करप्ट है, यहाँ पर लोगों को हुकूक नहीं मिल रहा है, यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर निज़ाम में सिफारिश है, यहाँ पर निज़ाम में रिश्वत है, कौन मुजाहरे कर रहा है? मुख्तदा सदर साहब,
जिन मतलब जिनके खुद तीन,
अरे आप जवाब दे हैं लोगों को, जवाब दे आप हैं,
यानी बेवकूफ बना रहे हैं,
ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? अगर आपको कोई शिकवा और गिला अमेरिका से है तो उसका यानी अपने मुल्क के अंदर मुजाहरे करके सपोर्ट करना इन लोगों की जिनको आज जोकर कहते हैं कि जिन्होंने आगस्तानी तक की तौहीन की है, यानी ये इस तरह की रवैश है। देखिए मुख्तदा का स्टार्ट बहुत अच्छा है, कि जब वो सब लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ, उसने कायम किया और उसने मलेशिया बनाई है।
हमने भी उसके देखा था,
शोहरत तो वहीं से मिली है, लेकिन 25-26 साल की उम्र है उस वक्त उसने ये मलेशिया बनाई है, जज्बाती अंदाज में आगे आया फला आया, फिर जो है ना वो अजीब है, यानी किसी नज़रिए पे वाजे नहीं है। आप फिर ऐसा ऐसा यहाँ सैयद अली खामनेई साहब के साथ भी नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई साहब के साथ भी बैठे नज़र आ रहे हैं, उसी वक्त मोहम्मद बिन सलमान साहब बैठे नज़र आ रहे हैं, यानी पता नहीं चल रहा है कि आप चाह के आ रहे हैं। बहरहाल एक ऐसी शख्सियत के शायद वजूद ही अपने आप को ऐसा दे रहा है कि मैं किसी वक्त कोई सा भी रोल प्ले करूँ, किसी वक्त किसी तरफ भी उलट जाऊँ तो लोग कहें इनके तो आदत है, आज यहाँ कहें कल यहाँ आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है इस तरह का खुद जानबूझ के उसने अपने रोल ले लिया है, या कोई उसकी तरबियत कर रहा है इस तरह से, यार ससी सामने हो। बहरहाल कामयाब तो हो गया ना वो, यानी उसने जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है उसमें उसने 6 लाख वोट तो ले लिए ना, और 73 सीट्स उसके पास आ गई हैं। ये अलग बात है कि अभी इस इंतखाबात के अंदर, अब आप ज़रा पार्टीज़ देखिएगा, हमने आपको बताया कि अल-फतह है, अल-नसरा है, अल-हिकमा है, दौलत क़ानून है, और इधर सदरी ये भी या हैं तो ये लोग भी सायरून के नाम से, इसी तरह से अहले सुन्नत हैं। पहली मरतबा पिछली दफ़ा अहले सुन्नत वगैरह सब सहारा लिया करते थे किसी ना किसी शिया शख्सियत ऑर्गेनाइजेशन का, कि अलायंस उसके साथ बनाते थे, ये पता चल गया था कि इनकी तादाद 65% है। इस दफ़ा जो है भाई कि ये मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ तब्दीली देखें किस तरह की आई है, कि दूसरे नंबर पर जो है वो दूसरे नंबर पर, यानी मुख्तदा पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अहले सुन्नत आ गए, यानी 40,000 सीटें उन्होंने ले ली।
नहीं वो मुत्तहिद हो गए, उनका इलेक्शन लड़ा है।
एक दूसरे के पीछे से लगता यह है कि खबरें हैं बार तकरीबन 90% क्लियर है कि अरब इमारात ने पैसा खर्च किया है, पहले इसको शख्सियत बनाया, अंबार अल अंबार सूबा है, उस सूबे में हत्ता डेड सिटीज के जिनमें जिंदगी नहीं थी वो भी जिंदा कर दिया इसने काम करके, नाम बनाया है इस जलबूसी या हलबूसी ने अपना नाम बनाया, और नाम बनाने के बाद ये उसामा नुजाफी को पीछे छोड़ गया जो असल लीडरशिप थी पहले, उसको पीछे छोड़ गया, और फिर ये अब कहते हैं कि अरब इमारात का पैसा उसके पीछे। अच्छा इधर कोई भी शिया आबादियों में या और आबादियों में कहीं कोई पैसा नहीं दे रहा कि उस मुल्क को बनाया जाए, बहुत बुरी हालत है। आपने देखा होगा, आप नजफ गए हैं, आप मुख्तलिफ शहरों में गए हैं, आपको ताज्जुब होना चाहिए कि जो सद्दाम के ज़माने में पेट्रोल की कीमत का तायुन किया करता था, 10 मिलियन बैरल जो पेट्रोल निकाला करता था, मैंने बताया था पिछली दफ़ा आपको कि अभी इस दफ़ा 4-4.5 मिलियन पर आ गया है, वो कीमत का तायुन करता था कि ऑयल की कीमत क्या होगी आलमी मंडी में, ये वो मुल्क था। लेकिन आप इसकी रोडें देखें, आप इसकी गलियां देखें, आप इसकी मईशत देखें, आप इसकी ज़रात देखें,
घर देखें कितने पुराने,
आप इनके घर देखें, इनके मोहल्ले देखें, धूल मट्टी उड़ते हुए देखें, यानी हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम हो या हरम अबुल फजल अब्बास या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, वहाँ थोड़ी सी आपको तामीरा थोड़ा साफ सुथरा थोड़ा रोड बने हुए, और आप जैसे ही इधर उधर हो पता लग कीचड़ है, पाँव उठा के चलना पड़ रहा है, पानी बह रहा है, फलना हो रहा है, तो यानी किसी ने इनके ऊपर सरमाया नहीं लगाया, और इनको खुद भी ये नहीं हुआ कि भाई हम खुद ही अपने मुल्क को बना लें। आपके हाथ में मुल्क आया ही नहीं है। अब जो मैं आखिरी बातें करने जा रहा हूँ ना आपसे, वो ये है कि हमारे हाथ में इराक आया ही नहीं है। यानी पहले अमेरिका ने दो काम किए, पहले उन्होंने उतारी अपनी फौजी 17-18 के करीब बनाए फौजी अपने छावनियाँ, फौजी छावनियाँ पहले बनाई, जिसमें ये सबसे बड़ी वाली जो ये जिसको ईरानियों ने हिट किया था
ऐन-उल-असद,
ये वो थी कि जो सबसे बड़ी थी, वरना कुर्दिस्तान में भी हैं, सुन्नी आबादियों में भी हैं, बगदाद में भी और भी जगहों पर हैं, सामर्रा में और पता नहीं 18 के करीब इनकी फौजी छावनियाँ सिर्फ इराक में, और उधर पॉल ब्रैमर को बैठा रखा है 2003 से कि असल हुकूमत तुमने बनानी। मैंने बताया था आपको बाहर से इसने और इधर उधर से 30-35 अफराद जमा किए, यानी जैसे ये करज़ई और आपके लिए तो मिसाल आसान है ना, करज़ई और अशरफ गनी और इस तरह के लोग 30-35 जमा किए थे इराक में, और उनको फिर प्लान ये कर रहा था कि बाद में जब जमहूरी हुकूमत इनके हाथ में देके जाएंगे, कि जो कभी भी अमरीकी वजूद के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगी, जब भी बोलेगी ईरानी वजूद के ख़िलाफ़ बोलेगी, और अभी भी आप देखिए ईरान जिसने सबसे ज़्यादा इनकी सपोर्ट की है हर एतबार से, अगर ईरान ना आता, अगर हाज कासिम सुलेमानी तशरीफ़ ना लेते, सबको मालूम है कि बगदाद इनके हाथ से निकल जाना था,
दाइश पहुंच चुका था,
दाइश 20 किलोमीटर के फासले पर था, कुर्दिस्तान इनके हाथ से निकल जाना था, हाज कासिम वहाँ पर गए और कहा थोड़ा सा मसूद बारजानी को कहा कि थोड़ा सा स्टैंड ले लो, बस हम ही हाथ तुम्हारे, लेकिन ये ताकतवर नहीं है दाइश, असल में खौफ बहुत फैलाया है ना। आपने देख ही लिया, गर्दनें काटना, उल्टा टांग देना, ज़िबा करना, फलां करना, जो लाल लाल कपड़े पहना देना, छुरी लेके बैठ जाना, पीछे समंदर है, यानी खौफ बिठाने की रविशें हॉलीवुड में होता है सारा काम। तो जहाँ जहाँ जा रहे थे फतह करते चले जा रहे थे। अमरीका ने अब क्या तय किया है, वो ये है कि हम वो हुकूमत ही नहीं बनने देंगे, क्योंकि पिछली पार्लियामेंट ने फिर भी जुरत की और बयान दे दिया, मुहंदिस इंशाल्लाह अबू महदी की वजह से बयान दे दिया, पार्लियामेंट ने तय कर लिया, मुश्तरका कानून बन गया कि अमेरिका जो हमारा इलाका छोड़े, यानी खाली जमहूरी वो अपना सिविल लोगों की बात नहीं हो रही है, कहा कि सिविलियंस की बात नहीं कर रहे, आर्मी को भी अमेरिकन जाना पड़ेगा यहाँ से। उन्हें बुरा लग गया कि ये क्या बात होगी, जबकि वो पार्लियामेंट के अंदर बहरहाल हशद शाबी मौजूद थी वहाँ पर, इंशाल्लाह 30 कुछ सीटें थी उनकी, 30 से अबव कुछ सीटें थी। इस दफ़ा उन्होंने हशद शाबी को हरवाया, यानी शायद 12-13 सीटें रह गई या इससे भी कम, या इस तरह करीब करीब सीटें रह गई। तो ये सारा प्लान किया है, बहुत ही प्लांटेड कैलकुलेटेड इलेक्शंस हैं, और उसके बाद जो है ना कंट्रोल्ड इलेक्शंस हैं, जिसके अंदर ये तय पा गया कि वो कुव्वतें आएंगी ऊपर कि जिनके ऊपर हम सरमाया लगाएं, तो उस सरमाए की बुनियाद पर वो हमारी मर्ज़ी के फैसले करें। ये असल में तय हुआ, ये महदूद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता खुदा सिस्तानी को, शायद इस हद तक महदूद करेंगे, आप जाएँ इलाका छोड़ें हमारा, ये इस हद तक जाने के मूड में हैं।
अच्छा, आगा सिस्तानी को
जी, जब आगा सास्ती, मैं यानी ये खुदा ना करे, लेकिन मैं जो है वो हालात को अच्छा नहीं देख रहा इराक के, खुसूस इस इलेक्शन में। अगर
ये तो बहुत संगीन बात है,
बहुत संगीन बात है, जब यानी क्या मतलब है, उनको पता है कि असल कोई हमें यहाँ से निकालने का असल जो खिलाड़ी है वो मुक्तदा नहीं है, वो नूरी मालिकी नहीं है, वो आगा जाफरी नहीं है, या वो अम्मार हकीम नहीं है, जो असल खिलाड़ी है वो कौन है, जो असल यानी अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत है वो कौन है, वो तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की है। तो वो असल में आयतुल्लाह सिस्तानी को जो है ना वो कंट्रोल करेंगे, और ये अलग बात है कि आगा सिस्तानी गए तो ना हाफिज़ बशीर साहब ने रुकना है, ना फैयाज़ी साहब ने रुकना है, ना वो तो हमारे चौथे मरजीद तो इंतकाली कर गई, जो हकीम फैमिली के सईद हकीम साहब थे वो तो अल्लाह हाँ मरहूम हो गए। तो ये कोई भी मरजीद वहाँ नहीं रुकेगी, उसके बाद फिर ये नारा लगाएंगे कि क्योंकि फैयाज़ी साहब भी इतफाक़ से हज़ारे हैं पता है आपको, और जो हमारे पाकिस्तानी हैं हाफिज़ बशीर साहब, और ये ईरानी हैं, तो अब वो इनको फारिग करेंगे, और उसके बाद पहला फ़ैसला ये होगा पार्लियामेंट के अंदर, इसके बाद ये कि पार्लियामेंट में नहीं आएगा, बस ये खुद ब खुद पीछे ही लग जाएंगे कि इनको जाना चाहिए, पार्लियामेंट में फैसला हो जाएगा अमेरिका को रुकना चाहिए हमारे इलाके, अभी हमारा दाइश का ख़तरा है, अभी हमें फलां से ख़तरा है, अभी हम
अमेरिका दोबारा बुलाए ऑफिशियली बुलाया जाएगा
नहीं, यानी मुराद ये कि फ़ौजी जो छावनियों में है ना वो रुकेंगे, यानी वो आवाम तो नहीं आएगी दोबारा से, वो तो खुद घबराती है ना भाई। दाइश ने अफगानिस्तान में भी यही किया है कि इन्होंने मजबूत किया होगा अफगानिस्तान में दाइश को, लेकिन ये तालिबान को, लेकिन इन्होंने जब हमले किए तो आवाम तो मरी मरी, अमेरिकन भी मरे ना, 400 ज़्यादा अमेरिकन मरे वहाँ अफगानिस्तान में, ऐसे ही इराक में भी जब तक आप नज़र आओगे अमरीकी तो मरोगे, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह हशद शाबी की क़यादत है, या जैसे अब्दुल हमारे जो अभी अबू फिदक आए हैं ना इनकी जगह पे, मुहंदिस अबू महदी की जगह पे अबू फिदक आए, बड़ी शख्सियत है वो, ये जो कतायब अहले हक हैं कैस खिज़ाली, अब वो कैस खिज़ाली को छोटा आदमी तो नहीं है, वो सेकंड शख्सियत थी मुक्तदा की, मुक्तदा का नायब था वो, उनसे अलग हुआ, अलग होने के बाद उसने अपनी हिजबुल्ला बनाई, भाई ये उसको हिजबुल्ला नहीं कहते, कहते कतायब अहले हक हैं, लेकिन वो तो पीछे लग गए अमेरिकन्स के कि इनको यहाँ से निकालने निकालने। अब जो जो खेल हो रहा है वो समझिएगा, खेल क्या हो रहा है, खेल ये हो रहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट उन लोगों पर मुश्तमिल लेकर आनी है कि जो ये कानून पास करवा देंगे कि अमेरिकन्स को यहाँ पर रहना चाहिए, एक दूसरा वो कानून पास करवा देंगे कि कोशिश करेंगे कि हशद शाबी को गैर मुसल्ला होना चाहिए, ये दो बहुत बड़े बड़े खतरात मौजूद हैं इस वक्त। तीसरा पार्लियामेंट में नहीं होगा, लेकिन ये बात आवाम में आना शुरू हो जाएगी कि इराक गनी है, इराक जो है वो असल अरबी है, इराक जो है वो फ़र्ज़ करें आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का असल मेज़बान है, तो फिर हमारी जो मरजईयत है हौज़ा है इल्मिया है ये भी इराकी यानी इराकी होने चाहिए, ये कानून में नहीं आएगा, लेकिन ये बातें शुरू हो जाएंगी, आ रही हैं ये बातें अभी भी हो रही हैं वहाँ पर, लेकिन ये फिर ऐसे ऐसे ही हो जाएंगे। चौथा कहेंगे ईरान का रोल कम किया जाए, ईरान से ना हो तुर्की से हमारी तजारत को बढ़ाया जाए फलाओ, या तुर्की या किसी और मुल्क की तरफ इशारा होगा मिस्र या इधर उधर, लेकिन जो ईरान से तजारत हो रही है वो जब बॉर्डर्स इतने सारे खुल जाते हैं उनको कंट्रोल करने, जो ज़ायर के नाम पर इतने लोग शामिल हो जाते हैं, यानी ये सारी चीज़ें हैं जब इराक में होने जा रही हैं, और उस तरफ बेरा रवि यानी मीडिया की आज़ादी, आप ताज्जुब करेंगे, लगता ये मजाक में कोई कह रहा था कि जो भी आदमी वहाँ पर अपनी बीवी से नाराज़ होकर लड़के निकलता है घर से बाहर वो एक चैनल बना लेता है, ये अरबी के अंदर मारूफ मकुला है,
चैनल बना लेता
अरबी के अंदर जी, इराक की अरबी में मारूफ मकाला है, मकुला है, मकुला है। कहते हैं कि जो भी बेगम से नाराज होकर बाहर निकलता है वो चैनल बना लेता है। इतने चैनल्स बने हुए इराक के अंदर, यानी क्या, करबला एक, करबला टू, करबला थ्री, फरात एक, फरात दो, फरात इमाम हुसैन एक दो तीन चार, इमाम हज़रत अब्बास एक दो तीन चार, फिदक चार पाँच छः सात आठ, क्या मुसीबत है। इराकिया एक दो तीन चार पाँच, आप हैरान हो जाएंगे वहाँ बैठ के कि भाई ये हो क्या रहा है। तो वहाँ तो यानी हर छोटी बड़ी तंजीम का भाई ये चैनल चलाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए होंगे, ये हर छोटे बड़े आदमी के पास जो है वो इतना सरमाए कहाँ से आता है कि वो इस तरह के चैनल्स बना लेता है। तो हमें जो मुस्तकबिल की चंद बातें मैंने आपसे कर दी हैं, जिसका खौफ है जो होने जा रहा है वहाँ पे, और दुनिया क्या समझती रहेगी कि यार जो भी है, देखो इलेक्शंस तो जमहूरियत है ना, देखो इलेक्शंस हुए ना, तो अवाम के वोटों से कामयाब होने वाले नुमाइंदों के फैसले हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको इस पर ही गौर करना है कि ये कौन सा, और अगर किसी को शक है तो तहकीक कर ले इस बात की कि 6 लाख वोट लेके पूरे इराक से 6 लाख वोट लेके 73 सीटें मुक्तदा के पास हैं, और 8 लाख वोट लेके नूरी मालिकी के पास जो सीटें बनती हैं वो 35 हैं।
और इन इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है ना,
तो इस्लाहात इनकलाब की ज़रूरत है,
तो तब्दील निज़ामी तब्दील होगा,
निज़ाम तब्दील हुआ हुआ है, बहस करने की ज़रूरत है। ये हो क्या रहा है इराक के अंदर, ये कौन सा कानून है, किसने बनाया था ये। अच्छा इसका देखें जो असरात होते हैं, असरात बहुत बुरे होते हैं, वो ये होता है कि यानी जब तय पा गया कि ये सुन्नी इराक लेबनान में सुन्नी जो है वो हमेशा वज़ीर आज़म होगा, शिया जो है वो हमेशा स्पीकर होगा, और सदर हमेशा ईसाई होगा। वहाँ तो लिखा हुआ कानून है, फ्रांस ने बनाया था। अब उसकी बुनियाद पर जो इत्तेहाद बहैसियत मुल्क एक कौमियत की बुनियाद पे, जिसको कहते हैं लेबनानी, वो कभी इत्तेहाद कायम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम सोचते रहेंगे हम ईसाई हैं, हमें ये करना है, हम तो सुन्नी हैं, हम तो ये करना है, हम फला है, हमारी इसी एतबार से सीटें भी तय होती हैं, इसी एतबार से पार्लियामेंट की सीटें तय होती हैं, चलो यहीं तक रहती बात। इसी एतबार से जो उसकी नीचे की बॉडी कहलाती है वो भी इसी एतबार से तकसीम होती है, वो ज़रा भी एतबार तकसीम होते हैं, वो ज़रा ही छोड़ दीजिए, गवर्नर्स भी नीचे से तकसीम होते हैं, गवर्नर्स छोड़ दीजिए, अब नीचे आइए हुकूमत में मौजूद लोग जो हुकूमती मनसब पर आते हैं, जिसको आप यहाँ पर गवर्नमेंट्स जॉब कहते हैं, वो भी इसी एतबार से तकसीम होती हैं, आर्मी में भी ये तकसीम है,
यही सिस्टम चल रहा है
अब, और इसको मजबूत किया उन्होंने, और उसके बाद जो है ना वो इसका बिगड़ा हुआ सिस्टम इराक में मुसल्लत कर रहे हैं। और ये तजुर्बा करने के बाद मैंने आपसे कहा कि उनका इरादा यह है कि सऊदी अरबिया में, क्योंकि अवाम का नारा ऐसा ऐसा जमहूरियत की और इंतखाबात की बातें चल रही हैं, डेमोक्रेसी की बातें चल रही हैं, तुर्की तो आप छोड़ दीजिए, अपना हमारे मिस्र, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब इसी तरफ जाएंगे, इसकी भी बिगड़ी हुई हालत होगी। दुनिया को क्या शो होगा, यार वो जो जमहूरियत थी ना जिसका नारा अमेरिका और यूरोप लगाता है वो तो आ गई है ना, वो जमहूरियत आ गई है ना, देखो पार्लियामेंट बन गई है ना, देखो बाइख्तियार पार्लियामेंट है ना,
धोखा दिया जाएगा,
चलेगा कि सब के सब जो ना
धोखा है अपने 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 लोग रखने के लिए। तो ये कोई सलाह होती हुई नजर आ रही है?
नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ बिगड़ते हुए नजर, मैं तो आपको खतरे से आगाह कर रहा हूँ कि यानी अब खुदा ना करे अरबईन की ज्यारत के खतरे में, छोड़ दें आप अरबईन की ज्यारत, मैं कैसे कह रहा हूँ कि इराक की ज्यारत खतरे में। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा आना जाना करेंगे आप लोग तो बाहर उस कौम के साथ बैठेंगे तो कुछ समझाएंगे, कोई बातचीत होगी, कुछ फलना होगा, वो आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे। तो बात ये है कि वो चाहते हैं कि ऐसा कोई अट्रैक्शन ही ना हो किसी भी कौम का, किसी भी मज़हब का, किसी फ़िरके का हमारे साथ, ये बातें ही ना हो। तो वह आहिस्ता आहिस्ता इस ये भी ख़तरे में मुस्तकबिल के अंदर, वो दना करे मेरी ये बातें जो हैं वो मौजूदा हालात को देखते हुए सही साबित हो, लेकिन जो है वो मेरी समझ में भारत यही बात आई।
खुदा करे सब ऐसा ना हो कोई जो ना वो बेहतरी है, सब बहुत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही इराक़ के वाले से, और हम मौजूदा जो हम इलेक्शन हुए उस पर भी हमने सरासर गुफ्तगू की है। नाज़रीन कराम आपने गुफ्तगू समाप्त फरमाई इराक के इलेक्शन के हवाले से, गुज़िश्ता 4 प्रोग्राम्स हिस्ट्री ऑफ इराक़ के हवाले से थे, और ये प्रोग्राम जी जी ये प्रोग्राम जो है ना वो हमारा इस इलेक्शंस के हवाले से था, ये प्रोग्राम हमने इराक़ के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स का अख्तिताम है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स के ज़रिए अपने सवालात हम तक पहुंचाएं, और फिर हम एक दफ़ा फिर आगा साहब को जहमत देंगे और आपके सवालात के जवाब आगा साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स का, आपके सवालात का, आपके फीडबैक का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। अपने मेज़बान कम्बर रिज़वी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।